अध्याय 11 न्यायकर्ता यिफ्तह का परिचय। गिलादी यिफ्तह वीर योद्धा था। वो एक वैश्या का पुत्र था। गिलाद यिफ्तह का पिता था। गिलाद को अपनी पत्नी से भी पुत्र पैदा हुए थे। जब पत्नी के पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने यिफ्तह को ये कहकर भगा दिया कि तुम्हें हमारे घर में कोई विरासत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी दूसरे स्त्री से हुआ है। इसलिए यिफ्तह अपने भाइयों के पास से भागकर टोप देश में रहने लगा। तब यिफ्तह के पास निकम्मे लोगों की मंडली इकट्ठी हो गई और वे उसके साथ लूटपाट करते थे। कुछ समय बाद अम्मोनियों ने इज़राइल से लड़ाई छेड़ दी। जब अम्मोनियों का इज़राइलियों से युद्ध छिड़ा, तब गिलाद के नेता टोब प्रदेश से यिफ्तह को लाने गए। उन्होंने यिफ्तह से कहा, आओ हमारे नेता बनो जिससे हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिफ्तह ने गिलाद के नेताओं को उत्तर दिया, तुम लोगों ने तो घृणा के कारण मुझे अपने पिता के घर से भगा दिया था। अब जब तुम पर विपत्ति पड़ी है तो तुम मेरे पास आए हो। गिलाद के नेताओं ने यिफ्तह को उत्तर दिया, फिर भी हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम हमारे साथ अम्मोनियों से लड़ने चलो और तुम गिलाद के सब निवासियों के शासक बनो। इस पर यिफ्तह ने गिलाद के नेताओं से पूछा, यदि तुम लोग मुझे अम्मोनियों से लड़ने के लिए वापस बुलाते हो और प्रभु उन्हें मेरे हाथ सौंप देगा, तब क्या मैं सचमुच तुम लोगों का शासक बन जाऊंगा? गिलाद के नेताओं ने यिफ्तह से कहा, प्रभु हमारी इस बात का साक्षी है कि हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। इस पर यिफ्तह गिलाद के नेताओं के साथ गया। लोगों ने उसे अपना शासक और नेता बनाया। यिफ्तह ने ये सब बातें मिस्पा में प्रभु के सामने दोहराई। यिफ्तह और अम्मोनी। यिफ्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से कहला भेजा, मुझसे आपका क्या जो आप मेरे देश पर चढ़ाए हैं? अम्मोनियों के राजा ने यिफ्तह के दूतों को उत्तर दिया, जब इज़राइली मिस्र से आए थे तब उन्होंने अर्नोन से यब्बोक और यर्दन तक मेरा देश छीन लिया था, इसलिए अब उसे स्वेच्छा से वापस कर दो। तब यिफ्तह ने दूसरी बार अम्मोनियों के राजा के पास दूत भेजकर उससे कहलाया, यिफ्तह का यह कहना है कि इज़राइल ने मोआब का देश और अम्मोनियों का देश नहीं छीना है, बल्कि इज़राइल मिस्र से आकर उजाड़ खंड से होता हुआ लाल समुद्र के पास और फिर कादेश आया। वहां इज़राइल ने एदोम के राजा के पास दूतों द्वारा यह निवेदन भेजा था कि हमें अपने देश से होकर जाने दीजिए, लेकिन एदोम के राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने मोआब के राजा के पास भी कहलाया था, लेकिन उसने भी नहीं मानी। इसलिए इज़राइल कादेश में ही रह गया था। इसके बाद वो उजाड़ खंड में चलते हुए एदोम देश और मोआब देश का चक्कर लगाते हुए मोआब के पूर्वी भाग में आ पहुंचा और उसने अर्नोन के उस पार पड़ाव डाला। उसने मोआब देश में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अर्नोन नदी मोआब की सीमा थी। फिर इज़राइल ने हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजे। इज़राइल ने उससे निवेदन किया कि हम आपके देश से होकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाना चाहते हैं, आप हमें जाने दीजिए। लेकिन सीहोन ने इज़राइल को अपने देश होकर जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि सीहोन ने अपने सब लोगों को एकत्रित कर यहसा के पास पड़ाव डाला और वो इज़राइल से लड़ने लगा। परंतु प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने सीहोन और उसके सारे लोगों को इज़राइल के हाथ दे दिया। इस प्रकार इज़राइल ने उन्हें पराजित कर उस देश को अधिकार में कर लिया जिसमें अमोरी बसे हुए थे। उसने अर्नोन से यब्बोक तक और उजाड़ खंड से यर्दन तक अमोरियों का सारा देश अपने अधिकार में लिया। अब यदि प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने अमोरियों को अपनी प्रजा इज़राइल के आने पर भगा दिया तो क्या आप अब उसे फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं? यदि आपका देवता कमोश किसी को भगा देता तो क्या आप उसका देश अधिकार में नहीं कर लेते? ठीक इसी प्रकार हम उसका सारा देश अधिकार में कर लेते हैं जिसे प्रभु हमारा ईश्वर हमारे सामने से भगा देता है। अब क्या आप मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से श्रेष्ठ हैं? क्या उसने इज़राइल से कभी झगड़ा या युद्ध किया था? जब इज़राइल हेशबोन और उसके गांवों, अरोएर और उसके गांवों तथा अर्नोन के सब तटवर्ती नगरों में इन 300 वर्षों तक निवास करता रहा तो आप लोगों ने उन्हें इतने समय में अधिकार में क्यों नहीं कर लिया? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप मुझसे युद्ध कर मेरा अहित करने पर उतारू हैं। प्रभु न्यायाधीश है, वही आज इज़राइल और अम्मोन के लोगों के बीच न्याय करेगा। इस पर भी अम्मोनियों के राजा ने यिफ्तह द्वारा उसके पास भेजे गए संदेश पर ध्यान नहीं दिया। यिफ्तह की मन्नत और अम्मोनियों पर विजय। उस समय प्रभु के आत्मा ने यिफ्तह को प्रेरित किया। यिफ्तह गिलाद और मनस्से को पार कर गिलाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहां आया। यिफ्तह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा तो जो पहला व्यक्ति मेरी आगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वो प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्तह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्तह ने अरोएर से मिन्नीत के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह पराजित किया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इज़राइलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्तह मिस्पा में अपने यहां लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वो उसकी अकेली संतान थी, उसके सिवा यिफ्तह के न तो कोई पुत्र था और न कोई पुत्री। यिफ्तह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूं, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीनों के लिए जाने दिया। वो अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वो 2 महीने के बाद अपने पिता के यहां लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। उसका कभी किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं हुआ। इस प्रकार इज़राइल में इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि कन्याएं प्रतिवर्ष 4 दिन तक गिलादी यिफ्तह की पुत्री का स्मरणोत्सव मनाती हैं।